मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 3 मई 2016 है और आज के इस afeias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं ओंकार साय, आप जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से हैं। अमित, आप सोनीपत से हैं। मानवेंद्र सिंह, आप इलाहाबाद से हैं। और मोहित लखानी, आप अहमदाबाद से हैं। और प्रीति कुमारी जमशेदपुर झारखंड से हैं। तो ओंकार, अमित, मानवेंद्र, मोहित और प्रीति, आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब एक एक दिन घटते घटते 25 सितंबर की तारीख नजदीक आती चली जा रही है और आप सब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा करके एकेडमी के प्रति एक अपना कमिटमेंट शो किया है, आप पाएंगे कि बहुत जल्दी वह समय होगा जब आप और मैं, हम सभी एकेडमी में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जैसा कि मैं सप्ताह में एक बार अपने सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को याद दिला ही देता हूं, आज भी याद दिलाना चाहूंगा कि स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, प्लीज वे अपने अंदर बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर दें और कम से कम इस डेली ऑडियो को एक दिन के लिए भी मिस न करें। मित्रों, इससे पहले कि मैं लाइफ मैनेजमेंट पर आऊं, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली सूचना तो यह है कि अब हमारे टेक्निकल टीम ने यह डिसाइड किया है कि जो प्रेस क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, अभी के पैटर्न पर यही पैटर्न कंटिन्यू करेगी। मित्रों, आप लोगों से पूछा गया था कि पुराने पैटर्न को फिर से लाया जाए या नए पैटर्न को कंटिन्यू किया जाए। बहुत से मेल आप लोगों के आए और इस बात की मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उसके प्रति अपनी इतनी सजगता दिखाई। और जो मेल आए हैं, मैं समझता हूं कि उसमें जो रेशियो रहा है फ्रेंड्स, वो 75% टू 25% का रहा है। 75% स्टूडेंट्स ने नए के प्रति अपनी सहमति दी और लगभग 25% स्टूडेंट्स पुराने को ही कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन सवाल यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोट की पद्धति का नहीं है कि अधिक स्टूडेंट नए को कंटिन्यू करने के पक्ष में थे, बल्कि सच पूछे तो उसमें बात इसकी थी कि जो तर्क आ रहे थे नए और पुराने को लेकर, और टेक्निकल टीम ने जो महसूस किया कि इनमें से कौन सा आगे के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, किसमें ज्यादा फायदे हैं, भले ही थोड़ी सी कमियां ही क्यों न हो, तो एक मत से और बिना किसी संदेह के, बिना किसी तरह की आशंका के, उन्होंने महसूस किया कि नहीं, जो नया सिस्टम है इसे ही कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो मित्रों, यह घोषणा है कि प्रेस क्लिपिंग्स अभी आपको जिस पैटर्न पर मिल रही हैं उसी पैटर्न पर मिलती रहेंगी। और इसी के साथ ही मैं खासकर उन स्टूडेंट्स से माफी चाहूंगा जिन्होंने पुराने पैटर्न के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की थी। मुझे मालूम है कि हो सकता है कि इसको लेकर के उन्हें थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो, लेकिन वो दिक्कतें थोड़े ही वक्त की होती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नए पैटर्न पर वो बहुत जल्दी ढल जाएंगे, उसमें उन्हें बहुत ज्यादा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, एक सूचना और भी है। कल के डेली ऑडियो में मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि शनिवार को जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उस पर मैं सोमवार या मंगलवार को आपसे बात करूंगा। इसी बीच मुझे एक मेल मिला और उस मेल में उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। उनका सजेशन था, ये मेल अमित खंडेलवाल का था, जयपुर से उन्होंने लिखा और उनका सजेशन मुझे अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि सर, आप उनके उत्तर न दें, क्योंकि जब आप एक प्रश्न देते हैं तो सप्ताह भर हम लोग उस पर काम करते हैं और उसको लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर यदि आप उसके उत्तर सोमवार को बता देंगे तो फिर हम लोगों की अपनी जो कोशिश होगी वो दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैं इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताता नहीं था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है, जो आपके अपनी सोचने समझने की क्षमता है, वह मेरी वजह से दब जाए। देखिए, इस बात को तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे आप अभी माने या बाद में जाकर के माने, कि जो उत्तर लिखने का जो तरीका होगा वो आपका अपना तरीका ही होना चाहिए और वही परीक्षा में काम आएगा। तो आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। लेकिन साथ ही अमित ने एक अच्छी बात भी सुझाई कि सर, यदि इस पर कुछ बताया ही जाना है तो बेहतर है कि सप्ताह भर के बाद बताया जाए। मुझे ये बात अच्छी लगी, यानी कि इसके लिए हम फ्राइडे का दिन चुन सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को ही आखिरी डेली ऑडियो आता है। और मुझे ये बात सही लगी कि इस बीच में आप 6-7, 5-6 दिन तक लगातार उस पर काम कर सकेंगे। तो मित्रों, आज मैं आपको शनिवार को जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके बारे में कुछ भी बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही ये वायदा भी कर रहा हूं कि इस कोशिश को खत्म नहीं किया गया है। जो क्वेश्चंस आपको सैटरडे को दिए गए थे उसके बारे में हम लोग फ्राइडे को थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, लेकिन लिखित रूप में मैं अभी भी आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर को लेकर कुछ भी प्रोवाइड करने के पक्ष में नहीं हूं। तो मित्रों, उस पर हम लोग शुक्रवार को बातचीत करेंगे। एक और खबर है फ्रेंड्स, मेरे पास चित्रांशु शाक्य, जो ग्वालियर से हैं और हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने एक खबर भेजी है, इसको अब आप लोग चेक कीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि जो आपको ध्यान होगा कि नाविक जो जीपीएस भारत ने बनाया था, उस समय मैंने एक अखबार के माध्यम से कहा था कि भारत अब इस क्षेत्र में विश्व का तीसरा देश बन गया है। बाद में कुछ स्टूडेंट्स के मेल आए और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो फिफ्थ कंट्री है। मैंने भी फिर कुछ दूसरे अखबारों से कंसल्ट किया तो उसमें भी उन्होंने पांचवां देश बताया था। जो चित्रांशु शाक्य ने जो बात लिखी है वह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, इसे आप लोग थोड़ा सा अपने अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मित्रों, भले ही हमें किसी चीज का ज्ञान न हो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हमारे पास गलत ज्ञान हो। देखिए, इन्होंने लिखा है, उन्हीं के शब्द मैं आप लोगों को सुना रहा हूं कि सर, आपके द्वारा बताई गई सूचना कि नाविक जीपीएस बनाकर भारत इस क्षेत्र में विश्व का तीसरा देश बन गया है वह सही है। इसरो का मानना है कि भारत का यह सिस्टम 20 मीटर से भी कम की सटीकता हासिल करता है। भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले अमरीकी जीपीएस, रूसी ग्लोनास सिस्टम काफी कारगर साबित हुए हैं, लेकिन चीनी नेविगेशन सिस्टम बिडाऊ और यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो अभी पूरी तरह कारगर नहीं है। भारत का यह नेविगेशन सिस्टम भारत के 1500 किलोमीटर दूर तक नजर रख सकता है। इसके दायरे में पूरा दक्षिण एशिया आ जाता है। ये इन्होंने लिखकर भेजा है। तो मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो सटीकता है, जो एक सिस्टम जिस तरह से काम करेगा, उस सटीकता के मामले में यह तीसरा देश बन गया है और जो चीन और यूरोपियन यूनियन है अभी पूरी तरह कारगर नहीं हुए, इसके आधार पर भारत को तीसरा कहा गया है। तो इसे आप थोड़ा चेक कर लेंगे और अपने अपने स्तर पर इसे सुधार भी लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर, अदरवाइज आप लोग कहेंगे कि आज भी लाइफ मैनेजमेंट का जो भाग है वो गायब हो गया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब इसकी बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हैं। मेरे पास एक मेल आया है और वो मेल आया था, एक दो दिन पहले की बात है, वो लक्ष्य सैनी ने सहारनपुर से एक मेल भेजा था और वे उन्होंने प्रश्न किया था कि सर, मान लीजिए कि एक लड़का है जिसके पास बहुत टैलेंट है और दूसरा ऐसा है जो बहुत मेहनती है लेकिन उसके पास टैलेंट नहीं है, तो क्या मेहनत करके उस टैलेंट वाले लड़के को पीछे किया जा सकता है, जबकि वो जो टैलेंटेड लड़का है वो बहुत ज्यादा मेहनती नहीं है? ये प्रश्न उन्होंने किया। मुझे लगा कि ये उनका अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर के बहाने मैं आपसे कुछ बहुत ही इस बारे में व्यावहारिक बातें कर सकता हूं, और ये जो व्यावहारिक बातें हैं मैं सिविल सर्विस के लिहाज से समझता हूं कि शायद बहुत उपयोगी भी होंगी। दोस्तों, देखिए, जो टैलेंट है जो आप कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं जो लक्ष्य ने जो बात कही होगी कि वो लड़का होगा वो, उसके पास कुछ नेचुरल टैलेंटेड होंगे, उसकी मेमोरीज बहुत शार्प होगी, चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती होंगी, चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता होगा, मेमोरी पावर शार्प होने के कारण वो उसे बहुत लंबे समय तक याद रख पाता होगा, ये सारे टैलेंट उसमें होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो मेहनती नहीं है। और दूसरी तरफ है कि एक व्यक्ति जिसके पास इस तरह के टैलेंट नहीं है, मतलब कोई हम अगर उसको गॉड गिफ्टेड कह दें, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो नहीं है लेकिन वो मेहनती है। मित्रों, एक बात हमें प्रकृति के सिद्धांत से बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जिसे हम टैलेंट कहते हैं, बेसिकली मान करके चलिए कि वो एक विशिष्ट गुण होता है जो सभी में कुछ न कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ जिसकी मेमोरी पावर अच्छी है वही टैलेंटेड है, जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ पाता है वही टैलेंटेड है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किताबी ज्ञान का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती लेकिन व्यावहारिक ज्ञान बहुत जबरदस्त होता है। कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनकी क्षमताएं बहुत ऊपर होती। जैसे अभी एक फिल्म आई है, आप लोगों ने सुना होगा, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन पर बनी हुई फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग मिले तो देखिएगा। हिंदी में नहीं आई है, इंग्लिश में आई है और पिछले शुक्रवार को ही ये रिलीज हुई है। अनफॉर्चुनेटली भोपाल में वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, मैं इस पर कभी आप लोगों से बात करूंगा। अब रामानुजन को पढ़ने में उनका मन ही नहीं लगता था लेकिन वो मैथमेटिक्स के मामले में दुनिया के बहुत ही टॉप मोस्ट मैथमेटिशियंस में माने जाते हैं और केवल 32-33 साल की उम्र में वो ऐसा कुछ करके चले गए कि बड़े बड़े मैथमेटिशियंस आज उनकी प्रतिभा को देखकर दंग हैं। तो प्रकृति सभी में कुछ न कुछ तक टैलेंट देती है। एक तो पहली बात तो ये कि आप लोग सिर्फ टैलेंट को इसी से मानकर न चले। निश्चित रूप से मित्रों, बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बहुत अच्छा बीज है, बहुत हाई क्वालिटी का बीज है, और यदि आप उसे जमीन में नहीं डालेंगे तो बीज अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर उसके जमीन में दबा भी देंगे तो फिर उसका पालन पोषण होना चाहिए, उसको बकायदे हवा मिलनी चाहिए, रोशनी मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए, तभी वो बीज प्रस्फुटित होगा। यानी कि कोई भी प्रतिभा अपने आप में विकसित नहीं हो पाती है, फिर उसे पालना पोषना पड़ता है, यानी कि फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। और मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मैंने खुद अपनी लाइफ में एक से एक टैलेंटेड लोगों को देखा है, जिन बचपन में उनकी क्षमताओं और प्रतिभाओं को देख करके लगता था क्या कमाल का लड़का है, क्या कमाल की लड़की है, लेकिन आगे जाकर के वो इतने ज्यादा बेकार मतलब सफलता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, या जिस क्षेत्र में उम्मीद की जा रही है उसकी दृष्टि से, मतलब एक तरीके से अगर उस लिहाज से कहा जाए तो उन्हें असफल ही माना जाएगा, क्योंकि उनके पास जो प्रतिभा थी, जो क्षमताएं थी, जो ऊर्जा थी, उनका वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं मेहनत पर आता हूं। देखिए, इसे मुझे लगता है कि हमारे यंग जनरेशन में जितने भी स्टूडेंट हैं या दूसरे भी क्यों ना हो, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि जब हम मेहनत की बात करते हैं तो वो मेहनत क्या है। मित्रों, मेहनत का मतलब घंटों से नहीं है, मेहनत का मतलब केवल फिजिकल लेबर से नहीं है। जब तक कोई भी काम उसी तरीके से नहीं किया जाएगा जिस तरीके से किया जाना चाहिए, उस दिशा में नहीं किया जाएगा जिस दिशा में किया जाना चाहिए, तब तक आपकी मेहनत कभी भी रंग नहीं ला पाएगी। जैसे मैं अभी आपको दो लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, चलिए हम मेहनत की ही बात करते हैं। एक, आपने दीपा कर्माकर को भी अखबारों में पढ़ा, जो अगरतला की रहने वाली हैं और जिन्होंने भारत में मतलब जिम्नास्ट के लिए क्वालिफाई किया, ओलंपिक, रियो ओलंपिक के लिए जिम्नास्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया है, राइट। अब आप देखिए कि डेफिनेटली बिना मेहनत के तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ मेहनत कैसे होती है, सिर्फ मेहनत भी नहीं कर सकती, जो कि मैंने कहा कि उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। जो उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है दीपा की, ये जानिए, वो है उनके पिता, क्योंकि उनके पिता ऑलरेडी स्पोर्ट्स के कोच हैं, तो वो वातावरण उनको मिला, वो फैसिलिटी जितनी भी वो पर्सनल लेवल पर प्रोवाइड कर पाते उतनी उन्होंने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की, उनको गाइड किया, यानी कि जिस तरीके से मेहनत की जानी चाहिए उस तरीके से उनसे मेहनत कराई गई और वो टॉप कर गए। नो डाउट कि केवल पिता के ही कोच बनने से कुछ नहीं होता, अगर दीपा में खुद मेहनत करने की क्षमता नहीं होती तो वो सफल नहीं हो पाती, लेकिन मेहनत कराने वाला भी कोई चाहिए, या अगर कोई नहीं भी है तो उस तरह का पूरा वातावरण चाहिए। मैं दूसरा नाम लेता हूं, उन्होंने भी ओलंपिक में क्वालिफाई किया, ओलंपिक के लिए, अभी रियो ओलंपिक के लिए और नौकायान के लिए किया है, दत्तू। अब आप उनकी लाइफ हिस्ट्री देखिए, उनमें क्या था, वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, एक तरह से मजदूर परिवार से ही कह लीजिए, एक ऐसी जगह से थे जहां पानी का अभाव रहता था, और नौकायान के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। किसी तरह से वो सेना में शामिल हो गए, सेना में इनिशियल स्टेज पर शामिल हो गए। जब सेना में शामिल हो गए तो आपको मालूम है कि आर्मी में तो खेल वगैरह को बहुत ही प्रोत्साहित किया जाता है, तो वहां उन्हें एक मौका मिला, और सबसे बड़ी उनकी ताकत है, उनकी जो हाइट है वो शायद 6'4" है। अब ये जो 6'4" है ये उनकी स्पेशल प्रतिभा है जो प्रकृति ने उनको दी,
राइट
और नौका चलाने के लिए अगर आपके पास लंबे हाथ हैं तो मान करके चलिए कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जैसे दौड़ के लिए अगर आपके पास लंबे पैर हैं तो आप लंबे डग भर सकते हैं, तो दूसरों की तुलना में आप बेहतर स्थिति में होंगे। तो उनके पास 6 फीट 4 इंच हाइट है, उनके लंबे हाथ हैं, जिसकी वजह से सेना ने फिर उनको नौका के लिए चयन किया। उन्होंने भी फिर मेहनत की, सेना ने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया अपनी प्रतिभा का जो नेचर ने उनको दिया था, और फिर मेहनत और प्रतिभा दोनों मिलकर के आज वो हमारे देश के एक आइकॉन बन गए हैं। रियो ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मित्रों, यहां मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि उनके पिता कोच थे, उसको आप कभी इग्नोर मत कीजिए, उसके बिना मेहनत बेकार हो जाती। और फिर ये जो जिनके पास टैलेंट था, दत्तू के पास जो हाइट के रूप में टैलेंट था, अगर इनको सेना नहीं मिली, सेना में ये नहीं जाते, तो बट नेचुरल है कि फिर ये 6 फीट 4 इंच की हाइट की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते कि बैठे रहते और क्वालिफाई कर जाते। इसीलिए याद रखिए जो मैंने आप पहली बात कही आपसे कि केवल मेहनत ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो सही तरीके से मेहनत की जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि स्टूडेंट अपने तरीके से चीजों को सोचते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा तो और मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जिस चीज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे आप उसे जैसे भी पूरा करें, तभी आपकी मेहनत रंग ला सकती है। अदरवाइज फिर केवल फालतू की मेहनत, बिना दिशाहीन मेहनत करने से आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये एक वैज्ञानिक सत्य है और इस वैज्ञानिक सत्य को हमें पूरी विनम्रता के साथ और पूरी चेतनता के साथ स्वीकार करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, AIR न्यूज का जहां तक संबंध है, कल भी कुछ विशेष खबरें नहीं है। एक खबर तो यही थी, छोटी सी खबर, आपको मालूम है विजय माल्या जी का आप देख रहे हैं, जो किंग फिशर के मालिक थे, उन 9000 करोड़ रुपए बैंक के बचे हुए हैं फल, और वो फिर ब्रिटेन चले गए भारत छोड़ करके, उनका पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है। वो राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य भी थे, तो वहां की जो एक नैतिक समिति, एथिक्स कमेटी होती है, वो इस पर विचार कर रही थी कि इन्हें निष्कासित किया जाए या रखा जाए राज्यसभा की सदस्यता से। तो इससे पहले कि वो कमेटी कुछ निर्णय लेती, विजय माल्या जी ने राज्यसभा की सदस्यता से अपना त्याग पत्र भेज दिया गया है। अब स्वाभाविक है कि वो त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा, और वैसे भी शायद 1-2 महीने के बाद उनका ये जो राज्यसभा का जो टर्म था, जो 6 ईयर्स का होता है, वो पूरा होने वाला भी था। ये एक छोटी सी खबर थी। दूसरी खबर दोस्तों लंबे समय से चल ही रही है, मैं केवल उसका उल्लेख कर देता हूं, जो अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को लेकर के है, उस पर लगातार पूछताछ जारी है। खासकर सिविल सर्विस की दृष्टि से केवल 2 ही पॉइंट मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जो अगुस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर है वो किस देश से लिया गया है, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। आपको मालूम है कि बार बार इटली का नाम आ रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, तो स्पष्ट होना चाहिए दिमाग में कि ये इटली से लिया गया है। एक विशेष किस्म के ये हेलीकॉप्टर हैं जो बहुत ही आधुनिक तकनीक से युक्त हैं, और खासकर जो बहुत ही VVIPs होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा यह दोस्तों कि किस तरीके से जो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है वो, उसमें किस तरीके से राजनेताओं के भी नाम आते हैं, पदाधिकारियों के भी नाम आते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष है वो ये है कि वायुसेना के जो प्रमुख रहे उनका भी नाम आ रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि चीजें स्पष्ट न हो जाएं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है, तो इसे आप एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, एक और खबर थी, और वो थी खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाने के मामले में। सरकार लगातार, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो लगातार इस पक्ष में होते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है उनको निजी क्षेत्र में भी आरक्षण उपलब्ध कराया जाए। आपको मालूम है कि सरकारी क्षेत्रों में तो इनके लिए आरक्षण है, लेकिन निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, और अगर निजी क्षेत्र वालों से पूछा जाए तो वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। फिलहाल सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि वह तो आरक्षण के पक्ष में है, और अगर सभी राजनीतिक दल इसमें अपनी सहमति देते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। और बट नेचुरली कि अगर सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो हो सकता है कि सरकार विधेयक लेकर के आ जाए, और यदि सरकार कानून ही बना लेगी तो स्वाभाविक रूप से फिर निजी क्षेत्रों को वह आरक्षण देना ही पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं वो सरकार के नियम के तहत उन्हें अपने यहां कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आर्थिक रूप से बहुत गरीब वर्ग के लड़कों को एडमिशन देना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह से वो फिर प्राइवेट सेक्टर्स के फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी ये मजबूरी हो जाएगी। लेकिन जो इसके बारे में सोचने वाले लोग हैं वो इस पर भी, इस बात को लेकर के भी थोड़े से चिंतित रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि यह कदम उठा लिया गया तो फिर इंडस्ट्री सेक्टर इसका बहुत विरोध करे, विदेशी जो भारत में आकर के और मेक इन इंडिया में मदद करना चाह रहे हैं या कुछ इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं उन पर इनका विपरीत निगेटिव इम्पैक्ट न हो, तो वो भी एक सोचने की बात है। और डेफिनेटली इसका एक राजनीतिक पक्ष तो इस मामले का है ही, क्योंकि भारत की स्थिति को देखते हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनके हित की, कल्याण की, उनके मत की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास संख्या का बल भी है। और सच पूछिए केवल संख्या का बल ही नहीं, वो एक सामाजिक आवश्यकता भी है और हमारे संवैधानिक संकल्प के अनुकूल भी है। इसी के साथ ही मित्रों, अगर आप लोगों ने खबर पढ़ी हो मध्य प्रदेश में, तो अखबारों में वो खबर बहुत ही प्रोमिनेंटली दो दिन से आ रही है, और वो ये कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट जबलपुर में है उसने खासकर पदोन्नति के मामले में, प्रमोशन के मामले में जो आरक्षण की जो पद्धति थी उसे गलत ठहराया है और उसे खत्म करने के लिए कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। नौकरी में आरक्षण ठीक है, लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद प्रमोशन में भी उन्हें आरक्षण दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो देखिए, फिर से इसके दो पक्ष होते हैं सीधा सीधा। एक तो मानवीय व्यवहार का पक्ष है कि इससे जिनको नुकसान होता है वो इसके विरोध में होंगे, जिनको फायदा होता है वो इसके पक्ष में होंगे, सामान्य तौर पर यही होता है। जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार अभी तक प्रमोशन में आरक्षण दे रही थी, और अगर इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो फिर से एक संकट पैदा होता है कि यदि सरकार हाई कोर्ट की बात को ज्यों का त्यों मान लेती है तो फिर से ये जो पूरा का पूरा वर्ग है ये सरकार के विरुद्ध हो जाएगा, और सरकार के विरुद्ध होने का जो वो फिर बाद में सरकार को चुनाव में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो सरकार के लिए भी मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले कुछ ऐसा कह चुकी है कि शायद आरक्षण में, ये प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अब स्थिति क्या होती जा रही है, होगी, क्योंकि आप दिन पर दिन देख रहे हैं कि जो आरक्षण का मामला है एक तरीके से फिर से उलझता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में अलग तरीके से मांग हो रही है, जो एक समृद्ध वर्ग है वो भी आरक्षण की मांग करने लगा है। गुजरात का पाटीदार आंदोलन आपको मालूम है, राजस्थान का आपको गुर्जर, हरियाणा का जाट आंदोलन, ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि कुछ राज्यों ने अभी फिर अलग तरीके से आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी है, और जिसमें गुजरात सरकार का नाम बार बार आ रहा है कि उन्होंने 10% का अतिरिक्त आरक्षण घोषित किया है, और वो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, यानी कि जिनकी भी आय सालाना 6,000 रुपए से कम होगी, 6,00,000 रुपए से कम होगी, उन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा। आपको यह भी मालूम है कि हरियाणा सरकार ने भी आरक्षण का जाटों के लिए अलग तरीके से आरक्षण की घोषणा कर दी है, विधानसभा से उन्होंने उसे पारित भी करा लिया है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात और हरियाणा का जो आरक्षण है अब 59% पहुंच गया है, जबकि ये चीज आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि आरक्षण चाहे आप किसी भी समुदाय को दें, जो भी चीजें आप निकालें अपनी तरफ से करते रहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से आरक्षण अधिक होना ही नहीं चाहिए। और अब इन दोनों राज्यों में वो 59% हो चुका है। अब आप मतलब एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन आरक्षण जो सरकारों ने घोषणा की है उनका आगे हश्र क्या होगा, क्योंकि हमारे सामने एक इसके बारे में उदाहरण है कि राजस्थान सरकार ने जब गुर्जरों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया था तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उसकी न्यायिक समीक्षा हुई, और न्यायिक समीक्षा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत ठहरा दिया और खत्म कर दिया। तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कि गुजरात और हरियाणा के मामले में भी न्यायिक समीक्षा हो और फिर वो टिक न पाए। इस बारे में एक बात मैं आप लोगों के ध्यान में विशेष रूप से और लाना चाहूंगा मित्रों, और वो ये कि आपको मालूम होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 69% आरक्षण है। 69%। आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से आएगा कि फिर ऐसा क्यों है, यहां तो 59 है, फिर इनको क्यों नहीं है। तो यहां पर भी आपको आपके दिमाग में बहुत साफ होना चाहिए कि यह एक अपवाद है, और अपवाद इसलिए है कि संसद ने इसके लिए अलग से संविधान में संशोधन करके तमिलनाडु को इसकी इजाजत दी थी, यानी कि संविधान में संशोधन करने के बाद ही यह संभव हो सका है और यह केवल तमिलनाडु पर ही लागू हुआ। अब ये बात अलग है कि आप फिर से एक प्रश्न उठा सकते हैं कि जब तमिलनाडु को दिया जा सकता है तो गुजरात को क्यों नहीं दिया जा सकता, हरियाणा को क्यों नहीं दिया जा सकता, राजस्थान को क्यों नहीं दिया जा सकता, या हो सकता है कि इनके आधार पर दूसरे राज्यों में मांग उठने लगे तो उन्हें भी क्यों नहीं दिया जा सकता। फिर तो एक संविधान में संशोधन करने की ही बात आएगी। अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर आगे देखिए क्या होता है, अभी कुछ भी बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमें बहुत स्पष्ट रूप से मालूम होने चाहिए। मित्रों, ये तीसरी खबर थी, और चौथी खबर आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड की पहाड़ों में, जंगलों में जो आग लगी हुई है उसको, उसकी खबरें आप लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट आ रही है। थैंक्स गॉड कि अब वो कंट्रोल में है। ये एक आपदा प्रबंधन का मामला है, और अखबारों में जो चीजें आ रही हैं, और खासकर आप लोग अगर चैनल्स में भी देख रहे हैं तो आपदा प्रबंधन की चीजों को थोड़ा सा देखिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे होना चाहिए था, क्या नहीं किया गया, और जब घटना घट गई है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। और आखिरी खबर जो थी दोस्तों वो है कि जनसंघ के जो संस्थापक थे बलराज मधोक जी, वो नहीं रहे। वो बहुत ही अपने समय के बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, और जनसंघ के बारे में आप लोगों को मालूम हो शायद कि शुरू में जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी एक तरह से विपक्ष पार्टी थी वो जनसंघ ही थी, उसका नाम जनसंघ था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह, अटल और अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी वगैरह उसके सदस्य थे। फिर अब वो जनसंघ के नाम से पार्टी नहीं है, और सच पूछे तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यही जनसंघ बदलते बदलते अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने मौजूद है। फिर कुछ पार्टियों का विलय हुआ, फिर कुछ नाम बदला, कुछ पार्टी आपस में मिलकर के फिर उनका नाम बदला, तो हम कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल ये कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ही फिर जो जनसंघ के प्रोमिनेंट लीडर थे वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहे, तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो उस समय का, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी समय की जनसंघ पार्टी रही है। मित्रों, EIR न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में एक मैं आपको बहुत अच्छी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो है एनके सिंह जी की क्लिपिंग्स जो दैनिक जागरण में छपी है। देखिए, अभी हम सब न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि न्याय में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और खासकर जो हमारे न्यायमूर्ति जो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा कि न्याय इतने पद खाली हैं, तो एक बहस ही चल गई कि न्याय व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। उसके बारे में आप सबको मालूम है, अखबारों में काफी कुछ लिखा भी गया है। एनके सिंह जी ने उसी को लेते हुए एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है, और उन्होंने बताया है कि जो न्याय, जो जुडिशरी है, ठीक है वो तो अलग एक बात है और वो होना ही चाहिए, लेकिन दूसरी जो चीजें हैं उन्हें भी देखा जाना चाहिए। जैसे अपराध होते हैं तो अपराध के क्या कारण हैं, इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही है मित्रों, और इसको आप लोगों को मुझे लगता है कि नोट कर लेना चाहिए। कहा कि जो भारत की जो अब हम अक्सर जब भारत की बात होती है तो भारत की तुलना कभी अमेरिका से करने लगेंगे, कभी चीन से करने लगेंगे, कभी दूसरे देशों से करने लगेंगे, उस पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि भारत की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी, आबादी का जो घनत्व है, वो 360% पर स्क्वायर किलोमीटर है, 368% पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि चीन में ये 142 है, इंग्लैंड में 216 है, ब्राजील में केवल 24 है, ये ब्रिक्स के देश हैं, रूस में तो मात्र 8 है, और अमेरिका में 32 है। कितना, मतलब कल्पना करके देखिए, तो अमेरिका में 32 है और भारत में वो 368 है, और ऐसी स्थिति में बट नेचुरल है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर आबादी का उतना ही ज्यादा दबाव है। जब आबादी का नेचुरल रिसोर्सेस पर दबाव है तो उससे कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से पैदा होंगी, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होंगे, लोग गरीब होंगे। तो जब तक हम इस लेवल पर काम करके उन्हें इन स्थितियों से नहीं उबारेंगे कि उनके गरीबी से उनको मुक्त कराया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उनको हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, यही उनकी जरूरत है, तब तक हम सही मायने में उन्हें एक न्याय प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसे आप कह सकते हैं कि एक सोशल जस्टिस है, कि सोशल जस्टिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के बारे में इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि बिहार में जो आबादी का घनत्व है वो पूरे देश की तुलना में 3 गुना है, 1056 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर वहां आबादी का घनत्व है। तो स्वाभाविक है कि वहां और ज्यादा दबाव प्राकृतिक रिसोर्सेज पर है। तो मित्रों, ये बहुत अच्छा लेख है, आप लोग इसे देखिएगा। और कुछ दो लेख जो है ना, वो खासकर अभी दिल्ली में जो वायु प्रदूषण को लेकर के जो ऑड इवेन गाड़ी का फार्मूला जो लागू किया गया था, उसको भी लेकर के आर्टिकल है, और उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि वैज्ञानिक रूप से कितना सत्य है कि ऑड इवेन फार्मूला से वहां के वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो उसके ऊपर वो लेख है मित्रों, आप लोग उसे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब न्यूज़पेपर्स से भी बात पूरी होती है। एक बात मैं आप लोगों को और सूचना देना चाहूंगा कि जो करंट कंटेंट है उसे आप लोग देखिएगा, उसमें एक आर्टिकल फॉर्म में डाला गया है और वो ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर है। आपको मालूम है कि कुछ महीने पहले ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया था, और मुझे लगता है कि साइंस के कंटेंट की दृष्टि से ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सिविल सर्विस के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। तो बहुत ही एक कॉमन मैन के हिसाब से उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग प्लीज करंट कंटेंट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है, पंकज मिश्रा दिल्ली से, यासिर रसीद न्यू दिल्ली से, हिमांशु अग्रवाल मथुरा से, नवीन अग्रवाल प्रवेश हरियाणा से, आनंद कुमार वाराणसी से, विनोद राठी रोहतक हरियाणा से, मुकिमुद्दीन दिल्ली से, अतुल सौरभ नीरज नोएडा से, उत्कर्ष दीप पटना से, चंदन पासवान, आशीष शुक्ला कानपुर से, रजत बोलपुर से, सौरभ कुमार मिश्रा इलाहाबाद से, संदीप कुमार लखनऊ से, शैलेंद्र कुमार बीएचयू वाराणसी से, इम्तियाज हुसैन आरा बिहार से, कृष्ण कुमार, स्वाति गुप्ता कविराज भोपाल से, ऋतु रानी और आशीष कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और इस बात के लिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो करंट कंटेंट का जो हम लोगों ने अब नया कॉलम शुरू किया है, इस पर आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी कुछ समय तक आप सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहें कि कैसा लग रहा है, क्या और चाहिए, उपयोग किस तरह का चाहिए, कितना उपयोगी है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ आप लोग खुद आप लोगों के पास हो और हम उसका रिपीटेशन कर रहे हों। तो इस तरह के आप अगर मुझे अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को इससे आपके अनुसार काम करने में और अधिक मदद मिलेगी। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।